शिक्षार्थियों, आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल विषय के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं हमारे संसाधन से संबंधित बिंदु पर। शिक्षार्थियों, आपने संसाधन के शब्द के बारे में सुना होगा और अक्सर ये भी सुना होगा कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आखिर संसाधन क्या है? एक तो ये सवाल मन में उठता है। संसाधन के साथ साथ बात आती है कि क्या हम संसाधनों का उचित उपयोग कर रहे हैं, क्या हम इनका इस तरह तो उपयोग नहीं कर रहे हैं कि ये जल्दी समाप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ी इससे लाभान्वित ही ना हो पाए। तो बात आती है कि संसाधनों को हम किस प्रकार प्रयोग करें, वो कौन से तत्व है जो हमारे संसाधन है, हम कैसे इन्हें संरक्षित कर सकते हैं और भारत में ये संसाधन किस रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्यतः संसाधन, उसके प्रकारों और हमारे जैविक संसाधनों पर केंद्रित होगी, जिसपे हम बात करेंगे कि कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन विस्तृत हैं और कैसे उनका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि संसाधन है क्या। देखिए, संसाधन से सामान्यतः अर्थ यह लगाया जाता है कि मानवीय उपयोग के लिए कोई भी वस्तु, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो या कई बार वो मानव निर्मित भी हो सकती है, वो उपलब्ध हो। लेकिन अगर वास्तव में आप देखें तो संसाधन से तात्पर्य है मानवीय उपयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से है। हमें सामान्यतः प्राकृतिक रूप से संसाधनों की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार संसाधन सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। संसाधन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है तकनीक। यानी वो तत्व हो सकता है बहुत सालों से उपलब्ध रहा हो, लेकिन चूंकि उसको प्रयोग करने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, न ही मानव को यह ज्ञात था कि यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, तो उस परिस्थिति में वो संसाधन नहीं है। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो मान लीजिए कि जो परमाणु खनिज हैं, वो तो बहुत समय से हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, लेकिन वो संसाधन है, उनका मानवीय उपयोग के लिए वो महत्वपूर्ण है, ये जानकारी हमें पिछली कुछ सालों में ही हमें, या मान लीजिए 100 या 150 सालों पहले ही मालूम चला, तब वो संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध है और उसको प्रयोग करने के लिए उचित तकनीक बनाई जा चुकी है, वो हमारे लिए संसाधन है। ये संसाधन वास्तव में मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और कई बार जीवन के लिए आवश्यक भी बन जाते हैं। अगर आप देखें तो संसाधन वास्तव में किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं तो भूमि, जल, वन, वायु, खनिज, ये ऐसे संसाधन है जिसके बिना हम मानव जीवन के अस्तित्व की और एक समृद्ध मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वास्तव में ये विकास के आधार होते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखें तो एक तरफ तो ये हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर ये मानव जीवन के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर वायु उपलब्ध नहीं है तो क्या हम सांस ले सकते हैं, क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा? जल नहीं है तो क्या हम किसी क्षेत्र में जीवन की संभावना सोच सकते हैं? मान लीजिए किसी क्षेत्र में मानव जीवन विकसित हो रहा है, मानवीय अधिवास विकसित हो रहा है और वहां पर जल की उपलब्धता नहीं है, तो क्या वहां पर कोई भी अधिवास ज्यादा दिनों तक चल पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि आप देखें कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जल की सुलभता हमेशा रही है, नदियों का विस्तार हो, उनकी सहायक नदियां हो, यही कारण है कि यहां पर आप बड़ी सघन जनसंख्या भारत में पाएंगे। तो ये प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो जल हो, वायु हो, वन हो, अब हम वन की बात करें तो वन के अलग अलग लाभ हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं, जो वन्य जीव है वो हमारे एक तरह से देखें तो पर्यटन का एक आकर्षण केंद्र रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां वहां से मिलती हैं, तो इस तरह से वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देखते हैं तो ये दोनों मिलकर मानव के लिए एक उपयुक्त अधिवास का निर्माण करते हैं, उसके लिए एक उपयुक्त आर्थिक प्रगति का जो वातावरण है वो निर्मित करते हैं और साथ ही मनुष्य के लिए सांस्कृतिक विकास का भी आधार ये बनते हैं। तो संसाधन इन विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण है, चाहे वो मानव जीवन की उत्पत्ति के लिए हो, मानव की प्रगति के लिए हो, या हमारी अर्थव्यवस्था या सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए हो। तो ये विभिन्न रूपों में संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये जो संसाधन हैं, इनको हम वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। जैसे हम शुरू में बात की कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की बात की, फिर विभिन्न संसाधनों का जो स्रोत है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो कई सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। अगर आप प्रमुख रूप से देखें तो तीन आधार हैं जो इसको वर्गीकृत करते हैं। पहला तो है कि पुनर्नवीनीकरण के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है उपयोग के आधार पर। अब आइए इन तीनों रूपों में हम देखें कि कैसे संसाधन वर्गीकृत हैं। अगर हम किसी भी संसाधन के पुनः उपयोग या पुनर्नवीनीकरण के आधार पर देखें तो ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि नवीकरणीय, यानी उन संसाधनों का हमने प्रयोग किया और वो फिर से उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर हम बात करें जैसे जल की, जल हमें उपलब्ध होता रहता है। दूसरा है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन यानी जिनको उपयोग के बाद हम समाप्त कर देते हैं। जैसे अगर आप कोयले को देखें, अगर कोयले को आपने ईंधन के रूप में प्रयोग किया तो उसके बाद वो राख में बदल जाता है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। चाहे वो विभिन्न खनिजों की बात करें तो ये वो संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो अनवीकरणीय है और एक समय के पश्चात यानी उनका जो भंडार है वो निश्चित है। चक्रीय संसाधनों से तात्पर्य है कि उनके रूप में परिवर्तन कर हम बार बार हम उनका प्रयोग करते रह सकते हैं। तो ये पुनर्नवीकरण के आधार पर तीन प्रकार हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ही दो प्रमुख वर्गीकरण आपको मिलेंगे, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक संसाधनों का। तीसरा है उपयोग के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर देखें तो दो रूपों में उपयोग हम करते हैं। पहला तो हम करते हैं ऊर्जा के रूप में। अब ऊर्जा के रूप में एक है तो पुनर्भरण के अयोग्य, यानी हमने किसी भी संसाधन का ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया और वो बाद में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, परमाणु ऊर्जा के साधन है, इनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम इनको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पुनर्भरण के योग्य यानी जो दूसरा वर्गीकरण है उसमें जल है, क्योंकि बार बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार हैं। अब दूसरा है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर तीन प्रमुख वर्गीकरण है, पहला है खनिज, दूसरा है वनस्पति और तीसरा है खाद्य पदार्थ। तो ये एक तरह से विभिन्न आधारों पर हमारे संसाधनों का वर्गीकरण हुआ। अब इसमें भी जो सबसे प्रमुख है वो आता है वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो प्रकार हैं वो किसी न किसी रूप में इसमें सम्मिलित होते हैं। पहला जो प्रकार हमने बात की जैविक की, जैविक संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो कि पर्यावरण में उपलब्ध है, जैविक रूप से जीवित है वो, जैसे वन है, वन उत्पाद है, फसलें हैं, पक्षी हैं, वन्य जीव है, मछलियां हैं, सागरीय जीव हैं, ये सभी मिलकर हमारे जैविक संसाधनों का निर्माण करते हैं। ये संसाधन नवीकरणीय है क्योंकि कोई भी प्रजाति जो है वो अपने नए पीढ़ी का निर्माण करती है, तो ये पुनः उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि ये पुनरुत्पादित कर सकते हैं अपने को। लेकिन इसमें एक और खास बात शिक्षार्थी आप पाएंगे कि एक ही वर्गीकरण में अलग अलग संसाधन भी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी दूसरा वर्गीकरण भी उसमें आ सकता है। जैसे अगर जैविक वर्गीकरण की बात करें तो वृक्ष है, वृक्ष एक जैविक संसाधन है और नवीकरण है, लेकिन अगर मान लीजिए वो कोयला में बदल गया या खनिज तेल है, वो जैविक संसाधन तो है क्योंकि उसकी उत्पत्ति जैविक रूप से हुई थी, लेकिन वो नवीकरणीय नहीं है। कोयला का उपयोग एक बार आपने किया या खनिज तेल जिसे पेट्रोलियम डीजल उसका आपने प्रयोग किया, एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों संसाधन सम्मिलित होते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अजैविक संसाधन का। अब अजैविक संसाधन में वो समस्त पदार्थ सम्मिलित हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि जल, वायु, भूमि, खनिज। खनिजों में बहुत तरह के खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं, लोहा, तांबा, सोना, ये सभी अजैविक संसाधन है और ये सामान्यतः समाप्त होने योग्य होते हैं, क्योंकि न तो ये नवीकृत किए जा सकते हैं और न ही इनको हम पुनरुत्पादित कर सकते हैं। तो ये दो प्रमुख वर्गीकरण रहे संसाधनों के। अब हम भारत में जैविक संसाधनों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है वितरण की, क्योंकि संसाधनों का वितरण भूगोल में अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संसाधन का वितरण बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है, चाहे वो जैविक संसाधनों का हो, अगर उनका उपयोग संभव हो पाता है तो वहीं आसपास मानवीय क्रियाएं, मानवीय आर्थिक क्रियाएं भी विकसित हो जाती हैं और उनके अनुरूप ही वहां पर विकास प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि भूगोल के शिक्षार्थी के रूप में, चाहे वो संसाधन हो या और कोई भी घटक हो भूगोल के अध्ययन के, उनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले वन संसाधन की, तो वन संसाधन अगर आप भारत में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में वनों के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम प्रारंभ से बात कर रहे हैं कि भारत एक विशाल राष्ट्र है और इस विशाल राष्ट्र में एक ओर भौगोलिक विविधता है, दूसरी ओर जलवायु विविधता है, और ये दोनों विविधताएं मिलकर ही विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी का, विभिन्न प्रकार के वनों का विकास करती हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। यही कारण है कि भारत में आप विभिन्न प्रकार के वन देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अगर आप कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का लगभग 75.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि वनाच्छादित है, जो कि लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23% के आसपास है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि भी हुई, क्योंकि अगर हम एक निश्चित अनुपात निर्धारित करें तो लगभग माना जाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भू क्षेत्र में वनों का आच्छादन होना चाहिए। वो एक स्वच्छ वातावरण के लिए, एक संतुलित पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि भारत में लगभग 23% के आसपास वनाच्छादित भूमि है, लेकिन इसका वितरण बहुत अलग है। अलग से तात्पर्य यह है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में आपको वनाच्छादन का अलग अलग प्रतिशत देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 87% भूमि जो है वो वनाच्छादित है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में यह प्रतिशत लगभग 4 के आसपास है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको वनाच्छादन का अलग प्रतिरूप देखने को मिलेगा। यही प्रयास रहा है भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें भी इस बात को रेखांकित किया गया, और सरकार की विभिन्न योजनाओं में इस बात को भी निर्धारित किया गया कि कैसे हम कम वनाच्छादन वाले क्षेत्रों में हम वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करें, और इस दिशा में शासकीय पहल भी हुई और समाज को भी प्रोत्साहित किया गया कि वो इस क्रियाकलाप में भाग ले और अपने अपने क्षेत्र में वनाच्छादन को या वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे। यही कारण रहा है कि हम इसमें वृद्धि को भी हम महसूस करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि भारत चूंकि एक विशाल राष्ट्र है और इस विशाल राष्ट्र में अलग अलग प्रकार के वनों का वितरण आप देखेंगे। अब अगर यहां देखें तो मुख्यतः 6 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियां, ज्वारी वन और पर्वतीय वन। अब इसको भी देखें तो आपको हिमालय के क्षेत्रों में आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे, साथ ही भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, साथ ही मध्यवर्ती भाग में आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में आपको कटीली झाड़ियां भी देखने को मिल सकती है, और भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वारी वन देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आप देखें तो सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र हो या नदियों के मुहाने पर स्थित वन हो। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेंगे, और भारत के वनस्पति विवर्धन वाले पाठ में अब इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अगर हम वनों के बाद देखें, वो आती है वन्य जीवों की। विश्व में वन्य जीवों की बहुसंख्यक प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत इस मामले में बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार की वन्य जीवों को आप देख सकते हैं। विश्व के ज्ञात विश्व में जो जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं वो लगभग 1.05 मिलियन, यानी इनमें से लगभग 75,000 प्रजातियां, यानी लगभग 7.46% जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में पक्षियों की 1200 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि समृद्धि को दर्शाती हैं। आप देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने मिलेंगे। साथ ही भारत प्रवासी पक्षियों का भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आप देखेंगे कि कैसे शीत ऋतु में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, विशेषकर जहां पर जल की उपलब्धता है, वहां पर उत्तर की ओर से प्रवासी पक्षी आते हैं और शीतकाल में यहां पे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप स्तनपाई जीवों में देखें तो विशाल काय हाथी यहां उपलब्ध है, जो कि असम, केरल, कर्नाटक के अलावा मध्य भारत के मध्यवर्ती राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। शुष्क क्षेत्रों में आपको ऊंट यानी राजस्थान में देखने को मिलेगा। गुजरात में कच्छ केरन में जंगली गधे पाए जाते हैं। गुजरात के गीर वन में भारतीय सिंह यानी एशियाटिक लायंस कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा असम में एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी इसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलेंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि लगभग संपूर्ण भारत में मिलेंगे, चाहे वो बंदरों की प्रजातियां हो, हिरणों की प्रजातियां हो, जैसे कृष्णमृग है, चिंकारा है, चौसिंगा है, ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पर्वतीय क्षेत्रों में तहर की प्रजाति जैसे नीलगिरी तहर है, जो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगा। इसके अलावा आपको दलदली क्षेत्रों में स्वाम्प डियर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हिरणों की अलग अलग प्रजातियां भारत के अलग अलग क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। इनमें से प्रमुख है हांगुल, जिसे कि कश्मीर मृग कहते हैं, स्वाम्प हिरण, चीतर, कस्तूरी मृग और पिसूरी। इसके अलावा बिल्ली वर्ग में आपको तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ भी देखने को मिलेगा, जो मुख्यतः भारत के हिमालय के क्षेत्रों में आपको हिम तेंदुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व के राज्यों में आपको रेड पांडा और इस तरह की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से भारत वन जीवन में बहुत ही समृद्ध है और इनको संरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय अभयारण्यों की स्थापना की गई है। जैसे हमने बात की कि भारत पक्षियों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है, तो इसमें भी आपको बहुत ही रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे, चाहे वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो, उसके अलावा फेजेंट है, गीज है, बतख है, मैना, तोते, कबूतर, क्रेन, धनेश, सनबर्ड, ये ऐसे पक्षी हैं जो कि भारत के वन क्षेत्रों में और नम भूमियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोयल व बुलबुल जैसे गाने वाले पक्षी भी यहां आपको देखने को मिलेंगे। और आप चाहे वो ग्रामीण जीवन में रह रहे हों या शहरी परिवेश में रह रहे हो, आपके परिवेश के संदर्भ में आपको अलग अलग तरीके के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। बस अगर आप उसको एक थोड़ा सा अवलोकन की दृष्टि रखें, अपने आसपास को देखें, तो आपको इन पक्षियों के दर्शन अपने आसपास के क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है पशुधन की। अब अगर पशुधन की बात करें तो विश्व की लगभग 57% भैंसे व लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं। भारत की 2/3 से भी ज्यादा जो मवेशी है, जानवर हैं, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक व राजस्थान राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा भेड़ों की 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा अकेले राजस्थान में पाया जाता है, जबकि अलावा बकरियों का अगर आप वितरण देखें तो बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में इनका ज्यादा संकेंद्रण देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि के साथ साथ पशुपालन एक प्रमुख गतिविधि है अर्थोपार्जन के लिए और एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ भी है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़े, इनका आप पालन देख सकते हैं, चाहे वो व्यावसायिक रूप से ना हो, लेकिन कहीं न कहीं कम मात्रा में हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कृषि कार्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बैल है, जिनको आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है, या बुआई हो या अनाज की गहाई हो, तो अलग अलग कृषि संबंधी गतिविधियों में हम इनका प्रयोग देखते हैं। भले ही कितना भी मशीनीकरण हुआ हो, लेकिन हम अभी भी इनका उपयोग हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं मात्स्यिकी की। जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत में कृषि की प्रधानता है और कृषि एकांगी नहीं है, इसके साथ और भी गतिविधियां समानांतर रूप से चलती हैं। इन गतिविधियों में एक तरफ पशुपालन है तो मात्स्यिकी भी उतना ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। अगर आप देखें कि भारत का महाद्वीप विशाल महाद्वीपी आकार जो है उसके आसपास उसमें आपको बड़ी झीलों और नदियों का भी एक वृहद जाल देखने को मिलता है कि कैसे गंगा यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा जैसी ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां हैं और उसके अलावा इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको यहां पर झीलें भी देखने को मिलेंगी और इन सब के भी अलावा भारत को तीन ओर से महासागर का विस्तार है और वो एक लंबी तटरेखा भारत को उपलब्ध कराते हैं जहां पर मात्स्यिकी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यही कारण है कि भारत में मात्स्यिकी की असीम संभावनाएं हैं और इसका बड़ी तेजी के साथ विकास हो रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मात्स्यिकी लगभग दो तरीके की है, पहला तो है कि अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी यानी नदियों में झीलों में जो मछली पालन किया जा रहा है पकड़ा जा रहा है या आप देखेंगे कि कैसे व्यावसायिक रूप से इनको पाला जाता है। दूसरा है सागरी मात्स्यिकी यानी कि सागरों से जिनको हम मछलियों को पकड़ते हैं मछुआरे जाकर। लेकिन अगर आप देखें वर्गीकरण का तो मुख्यतः वर्गीकरण चार रूपों में है मात्स्यिकी का। पहला है सागरी मात्स्यिकी, दूसरा है स्वच्छ जल या अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी, तीसरा है एस्चुरी मात्स्यिकी और चौथा है पेरल मात्स्यिकी। अगर भारत में देखें तो लगभग 1800 से भी ज्यादा प्रजातियां मछलियों की विद्यमान है और जैसा मैंने कहा कि अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी में एक जल संसाधन की उपलब्धता और विशाल तटरेखा या दोनों मिलकर भारत में मात्स्यिकी के विकास का के लिए एक उचित वातावरण उपलब्ध कराते हैं। अगर हम कुल उत्पादन में देखें तो लगभग 63% हिस्सा सागरी मात्स्यिकी का होता है यानी जहां पर व्यावसायिक रूप से या जो मछुआरे हैं वो सागर से मछलियों को पकड़कर ले आते हैं। इन मछलियों में प्रमुख रूप से सर्डाइंस मैकरेल प्रॉन क्रिपर्ड और सिल्वर बेलीज मछलियां हैं जो कि सागर से पकड़ी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सागर तट पर भी इनको पकड़ते हैं या फिर सागरों के कुछ अंदरूनी भागों तक जाकर भी इनको मछुआरे जो हैं जो जिनकी नावें आजकल बड़ी समुन्नत भी हो गई हैं जिन पर भंडारण की सुविधा भी होती है उनके द्वारा इसको पकड़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी की तो कुल मत्स्य उत्पादन का 37% हिस्सा जो है वो अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी से आता है। अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी में जिन मछलियों को पाला जाता है या जो इन मीठे पानी के स्रोतों से चाहे वो नदी हो झीलें हो पकड़ा जाता है उनमें है कतला रोहिता कालाबासिल मृंगल और कार्प। तो ये प्रमुख प्रकार है अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी के। अगर हम इनका क्षेत्रवार वितरण देखें भारत में अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी के कहां कितना विकास हुआ है तो देखें तो लगभग 97 सागरी मात्स्यिकी के लगभग 97% से ज्यादा हिस्सा व अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी के लगभग 77% हिस्सा जो है वो केवल कुछ चुने हुए राज्य से आता है जिनमें है केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गुजरात में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी तटीय राज्य हैं लेकिन हम जैसे बात हमेशा करते हैं श्वेत क्रांति की या हरित क्रांति की तो अब एक नई क्रांति की का भी प्रयास लगातार हो रहा है वो है नीली क्रांति की यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो कि मात्स्यिकी से जुड़ी हुई है। तो कुछ उन क्षेत्रों में भी जो अभी तक मात्स्यिकी का केंद्र नहीं रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे राज्य वहां पर भी मात्स्यिकी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारी और दूसरे राज्यों में भी जहां पर भी संभावनाएं दिख रही हैं वहां पर भी मात्स्यिकी के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो हम बात कर रहे थे जैविक संसाधनों की कैसे जैविक संसाधन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद बात आती है अजैविक संसाधनों की। अजैविक संसाधनों में तीन प्रमुख अजैविक संसाधन है भूमि संसाधन जल संसाधन और खनिज संसाधन। अगर हम भूमि संसाधन की बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारत से बड़े केवल रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और मिस्र ही आते हैं। इस विशाल राष्ट्र में आप देखेंगे कि कैसे भूमि एक प्रमुख संसाधन है, और वो इस रूप में भी है कि इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के भूरूप देखने को मिलेंगे। जैसे लगभग 30% हिस्सा जो है वो वनों से ढका हुआ है, उसके अलावा 43% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, और शेष 27% क्षेत्र में आपको पठार और तटीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें हम पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्र एक तरफ सघन वनों से आच्छादित हैं, तो एक तरह से दृश्य सौंदर्य के लिए आकर्षण का केंद्र है। दूसरा, ये नदियों के उद्गम स्थल भी हैं, क्योंकि नदियों का उद्गम यहां से हो रहा है, तो भारत में वर्ष भर जल की आपूर्ति के लिए भी हम इन पर्वतों पर ही निर्भर है। तो इस तरह से चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, सदा प्रवाहित नदियों की दृष्टि से हो, वनों या वन्य जीवों की दृष्टि से हो, या औषधीय महत्व की वनस्पतियों की प्राप्ति के स्थान के रूप में हो, इन विभिन्न उद्देश्यों से वन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात आती है भूमि संसाधन के अंतर्गत, वो है मैदान की। मैदान इस रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। केंद्र इस रूप में है कि एक ओर हमें अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जो अनाज है वो इन मैदानी क्षेत्रों से मिलता है, क्योंकि ये समतल होने के कारण और जल की उपलब्धता होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा, मैदानी क्षेत्र में कल कारखानों का विकास, परिवहन के संसाधनों का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, तो इस तरह से सभ्यता का केंद्र भी बन जाते हैं। आप भारत के उत्तरी मैदान को देखें कि अनादिकाल से ही ये सभ्यता का केंद्र रहा है। वो कारण यही रहा है कि एक समतल है, जल की उपलब्धता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि नदियों के किनारे ही हम बड़े शहरों का विकास हम शुरुआत से ही देख रहे हैं। तीसरा जो है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र वास्तव में खनिजों और धातुओं का भंडार है। भारत में अगर देखें तो लगभग सभी प्रमुख खनिज भारत के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहां पर उनका उत्खनन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये भले हम कल कारखानों का जो की स्थापना है वो मैदानी क्षेत्र में देखे, लेकिन इनका आधार जो है वो ये पठारी क्षेत्र है। अब दूसरी बात आती है जल संसाधन की। जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना हम जीवन की अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, और साथ पृथ्वी में जीवन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहां पर जल की उपलब्धता हुई। भारत इस संदर्भ में बहुत ही भाग्यशाली है। जल को विविध रूपों में आप यहां देख सकते हैं, चाहे वो नदी के रूप में हो, भूमिगत जल के रूप में हो, झीलों के रूप में हो, ये तो इसके रूप है। साथ ही वर्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें एक बड़े क्षेत्र में लगभग निश्चित समय में वर्षा की प्राप्ति होती है। अगर आप देखें तो भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 117 सेंटीमीटर के आसपास है। जल की इस उपलब्धता के कारण ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नदियों और झीलों का आप विकास या उनकी संरचना आप देख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका ये समान रूप से वितरित है। अगर आप देखें तो भारत के कुल जल का, धरातली जल का 60% केवल सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वहन करते हैं। उसके साथ ही भारत की पुनर्भरण योग्य भूजल क्षमता लगभग 434 अरब घन मीटर है। इसके साथ अगर देखें तो जल की उपलब्धता तो है, लेकिन हमारी निर्भरता किस रूप में है कि लगभग 70% से भी ज्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का प्रयोग करती है। इसके अलावा सिंचाई के भी ये प्रमुख स्रोत हैं भूजल स्रोत, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो भूमिगत जल का भी तीव्रता से प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में आप पाएंगे कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे जाता है। एक तो जल की उपलब्धता कई बार असमान होती है, वर्ष के कुछ निश्चित महीनों में ही पूरा जल हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और शेष महीने शुष्क हो जाते हैं। उस स्थिति में भूमिगत जल का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि कहीं न कहीं पारिस्थितिकी के लिए और मनुष्य के लिए नुकसानदेह है। तीसरी बात आती है खनिज संसाधनों की। अब हम खनिज संसाधनों की बात करें तो भारत इस दृष्टि से भी समृद्ध है क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में आपको मिल सकते हैं। जैसे देखें तो लौह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र हैं, कोयला है, खनिज तेल है, बॉक्साइट है और अभ्रक, इनकी व्यापक निक्षेप आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि खनिज तेल की उपलब्धता जो है वो सीमित है और हम इसके लिए आयात पर निर्भर होते हैं। कुछ विशेष राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जिनमें खनिज का संकेंद्रण बहुत व्यापक पाया जाता है और भी चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लौह अयस्क हो या अन्य खनिज संसाधन हो, उनका निक्षेप आप यहाँ पर पाएंगे। जैसे अब देखें कि देश के कुल कोयला निक्षेप का लगभग 3/4 हिस्सा वो इन्हीं 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा भारत में जो अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं जो उपलब्ध हैं वो हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और रेडियोधर्मी खनिज। तो इस तरह से हम खनिज संसाधन की दृष्टि से भी संपन्न हैं। अब बात आती है उपलब्धता, तो महत्वपूर्ण है लेकिन उपलब्धता के साथ साथ संसाधनों के उचित उपयोग या कहें संतुलित उपयोग का भी उतना ही महत्व है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि संसाधन तो प्राचीन काल से उपलब्ध रहे हैं, लेकिन जब उनको उपयोग करने की तकनीक विकसित हुई तभी हम उनको संसाधन के रूप में प्रयोग कर पाए। यही कारण है कि संसाधन वास्तव में आप सोचें तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, निर्मित इस रूप में है क्योंकि उनकी आवश्यकता है, ये मनुष्य निर्धारित कर पा रहा है, कैसे उनको प्रयोग किया जाना है ये भी मनुष्य ही निर्धारित करता है। लेकिन इन निष्क्रिय उपादानों की या कहें जो कि एक तरह से अक्रियाशील हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब उनको उपयोग करने की उचित तकनीक बन जाती है और उसके बाद वो मूल्यवान संसाधन में परिणत हो जाते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को निर्धारित करते हैं। अब हम किसी क्षेत्र में बात करें तो चाहे वो उपकरणों की बात हो, मशीनों की बात हो, परिवहन व संचार के साधन की बात हो, ये सभी संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर होते हैं। और केवल ये जो भौतिक प्रगति है वही नहीं, अगर आप सांस्कृतिक विकास की बात करें, आप मनोरंजन के संसाधनों की बात करें, आप बौद्धिक कार्य की बात करें, प्रशिक्षण, उन्नत स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी इन संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनके लिए उपयुक्त भौतिक संरचना की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो इस तरह से संसाधनों का उपयोग तब भी संभव है जब उसके लिए उचित सांस्कृतिक व तकनीकी प्रगति हो चुकी हो। लेकिन अगर तकनीकी प्रगति ही कच्चे माल ही नहीं है तो आप तकनीक को कैसे प्रयोग करें, इसलिए ये दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं और आवश्यकता इस बात की भी होती है कि आप इनका उचित उपयोग करें। इसलिए आजकल आप देखें तो संसाधनों के उपयोग के लिए उचित तकनीक के साथ साथ ही समुन्नत तकनीक की आवश्यकता बन जा आवश्यक पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी तकनीक को विकसित किया गया ऊर्जा के उत्पादन के लिए और वहां हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी तकनीक है जहां पर कि कम मात्रा में कोयले के प्रयोग से अब ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं, तो वहां पर हम संसाधनों के अपव्यय को भी रोक पाएंगे। तो यही कारण है कि संसाधनों के उपयोग के साथ साथ प्रभावी उपयोग की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्थाओं में भी आप उच्च विकसित अर्थव्यवस्था देखेंगे जहां पर कि संसाधनों के उपयोग के लिए उच्च तकनीक उपलब्ध है, जैसे कि यूरोप है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहां पर उन्नत तकनीक उपलब्ध है और वो संसाधनों का उचित उपयोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी कम मात्रा में प्रयोग कर उससे ज्यादा उपलब्धता की प्राप्त कर पाते हैं। जबकि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं वहां पर तकनीक एक बड़ा कारण बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि संसाधन की दृष्टि तो संपन्न होते हैं लेकिन जो तकनीक प्रयोग की जा रही है वो कई बार उतनी समुन्नत नहीं होती और विकास की दौड़ में वो राष्ट्र पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह से संसाधनों के प्रयोग के लिए एक उचित और विकसित तकनीक आवश्यक बन जाती है। अब अगर आप देखें तो भारत में संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है ये भी एक आवश्यक है। अगर आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, चूंकि एक बड़ी मात्रा में जनसंख्या है और संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव भी है, लेकिन इसके बावजूद संसाधनों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में संसाधनों के उचित उपयोग की बात की गई। साथ ही अगर देखें तो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है, तो उस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कैसे अलग अलग उपयोग हो, चाहे वो कृषि में उचित तकनीक हो, हरित क्रांति की बात आप करें, मात्स्यिकी के विकास की बात करें, खनिज संसाधनों के उचित उपयोग की बात करें, या उनके नए क्षेत्रों की खोज की बात करें, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमें संसाधनों के उचित उपयोग पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन इसके बावजूद संसाधनों का संरक्षण एक उतना ही ज्वलंत विषय है। हम अक्सर देखते हैं कि संसाधन एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, और निश्चित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण एक आशंका हमेशा रहती है कि कहीं वो समाप्त ना हो जाए। साथ ही बढ़ती जनसंख्या का दबाव भी पड़ता है संसाधनों के ज्यादा उत्खनन के लिए, ज्यादा उपयोग के लिए। इसलिए संसाधनों के उचित उपयोग पर बार बार ध्यान दिया जाता है। जैसा अगर आप ऊर्जा संसाधन की बात करें, तो कैसे जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनके ज्यादा प्रयोग की बात की जाती है, चाहे वो सौर ऊर्जा की बात हो, पवन ऊर्जा की बात हो, या ज्वारी ऊर्जा की बात हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही तकनीक के हस्तांतरण और तकनीकी विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय या स्थानिक रूप से तकनीकें होती हैं जिनके प्रयोग से भी हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण की कोशिश की गई कि कैसे हम जनसंख्या का जो दबाव है उसको कम कर सकें। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से संसाधनों को संरक्षित करने का, साथ ही बहुत सारे ऐसे नीतियां और नियम भी बनाए गए, कानून बनाए गए, जिनके द्वारा भी संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब संसाधनों को हम संरक्षित कैसे करेंगे, हम इनको अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अगर हम वनों के संरक्षण की बात करें तो वन रोपण एक प्रभावी तकनीक है, हम नए वृक्ष लगाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव रोकना है तो वहां पर सीढ़ीदार खेती, समुच्च रेखाओं के अनुरूप खेती, साथ ही झूमिंग कृषि पर नियंत्रण, अतिचराई को रोकना, ये ऐसे कार्य हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम अगर प्रयोग करें तो हम उन वहां पर संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि अति उपयोग से भी संसाधनों का नाश हो रहा है, तो अति उपयोग को भी हम रोकें। इसके अलावा वर्षा के जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण, ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीक प्रयोग की गई, तो इस तरह से अलग अलग तकनीकों से, साथ ही ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को भी प्रयोग करने की बात की गई। तो ये बहुत कुछ तकनीकें हैं, कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है संसाधनों के संरक्षण की नीतियों की। तो इस संबंध में 1980 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया, 1987 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में पारित की गई, साथ ही राष्ट्रीय खनिज नीति 1990 में बनी, और समय समय पर इनमें संशोधन करके समय के अनुरूप इनको परिवर्तित भी किया गया ताकि हम अपने संसाधनों को संरक्षित कर सकें। आशा करता हूं शिक्षार्थियों की आज की परिचर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद।